Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shrutatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna Paya Kukarma Kripai Kevala Jnana Upaya Prabhu Bhaye Bhajo Shivaram Jinavani Ki Jnanate Hota Tattva Shraddha Charana Dhari Kevala Lahe पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उजास ते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय कै करिते क्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार।
जिनेंद्र भगवान की वाणी में चारों ही अनुयोगों द्वारा उपदेश मिलता है उसमें से कर्णानुयोग के माध्यम से हम कर्म का और अपना स्वरूप निश्चित कर रहे हैं। आज दोपहर से जरा विस्तार से बात हुई थी। हम अभी जो पत्रांक 9 से थोड़ा देखा था हमने कि जीव की अनादि से क्या भूल हो रही है कि वो ग्रंथ तो पढ़ता है, समय सार भी इसने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि गुणस्थान मैं नहीं हूँ, मार्गणास्थान मैं नहीं हूँ, ये वर्णादि शरीरादि मैं नहीं हूँ, मैं वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, स्पर्धक नहीं, अनुभाग नहीं, अनुभाग स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, बंध स्थान नहीं, तो इसने पढ़ डाला। मैं कौन नहीं हूं तो ये क्या होता है मार्गणा स्थान और गुणस्थान, तो उसका तो पता नहीं पर मैं उस रूप नहीं हूं ऐसा मानता है। तो यहां कहते हैं कि ये जीवों के जो आदि जो ज्ञान कराया जाता है जिनवाणी में, यहाँ 76 पृष्ठ पर लिखा है, देखिए हिंदी में, उसको देखकर फिर हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, कि शास्त्र में कर्म का, गुणस्थानों का, निमित्तों का ज्ञान कराया जाता है, संयोगों का ज्ञान कराया जाता है। अब अज्ञानी को तू जीव है ऐसा कहने से उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि जीव नहीं है, ये मनुष्य ही, ये देह ही मैं हूं मानता है। तो उसके पहले में पहले उसको संयोगों के द्वारा ज्ञान कराया जाता है, ये देहधारी जो है ना वो जीव है, ये भी मनुष्य पर्याय में है वो जीव है, ये एकेंद्रिय वाला वो जीव है, ये द्विंद्रिय वाला जीव है, इस तरह से संयोगों के द्वारा पर के रिलेटिव जो उसके जो परद्रव्यों के सापेक्षता से उसको समझाया जाता है कि यहां जीव रह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अनुमान के द्वारा हम कह सकते हैं यहाँ जीव रहते हैं, क्योंकि दिखाई देते हैं तो देह दिखाई देता है, जीव तो दिखाई नहीं देता, फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ जो जानने देखने की जो कोई बात चल रही है तो यहाँ जीव होना चाहिए। हम कहते हैं ना कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि मर गया तो क्या कहते हैं, इसका जीव निकल गया, क्यों, यहाँ जो कोई जानना देखने का कार्य हो रहा था तो अभी वो नहीं हो रहा है, तुम कहते जीव निकल गया, वहां भी हम जानते तो है कि ये जानने का कार्य जीव कर रहा था और वो अभी निकल गया, निकल गया है, जीव मर नहीं गया है, वो तो कहीं अन्यत्र उसने अन्य पर्याय धारण की है, इसकी बात तो हमने दोपहर में देखी थी। अब यहाँ 78 पृष्ठ पर यानी जो 90 पत्रांक का जो अन्य अंतिम पृष्ठ है उसको जरा निकालना। 77 देखो यहाँ जो लिखा है, जो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन यहाँ लिखता है, देखो जिनवाणी माता अन्य जीवों को, यह है उस पृष्ठ पर, हाँ
76 लास्ट लाइन,
उनकी स्वयं की अर्थात जीव की पहचान कराने के लिए, सर्वप्रथम जीव को खोजने के लिए 14 मार्गणा, या दूसरी पद्धति से कहना है तो 20 प्ररूपणाओं का विस्तृत वर्णन करती है। ये मार्गणा क्या होती है, प्ररूपणा क्या होती है, उसको देखेंगे हम, क्योंकि उसी को देखने जा रहे हैं हम। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और 14 मार्गणा, उसके नाम अभी यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ये सब मिलकर 20 होते हैं। प्ररूपणा का अर्थ होता है विशेष विस्तार से व्याख्यान, जीवों का व्याख्यान करना है, उसका विशेष बातें बताएंगे, कथन करेंगे, उसको कहते हैं प्ररूपणा। तो ये जीवों की प्ररूपणा किन किन अपेक्षाओं से करेंगे, तो जैसे संसारी जीवों को गुणस्थानों में विभाजित करके बताएंगे, फिर प्रत्येक गुणस्थान का स्वरूप बताएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। कितने गुणस्थान होते हैं आपको पता है ना?
14
गुणस्थान होते हैं। तो वो 14 के 14 गुणस्थानों का स्वरूप हमें निश्चित रूप से ख्याल में आना चाहिए, क्यों, हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं, साइट सीइंग के लिए जाते हैं, कोई अन्य शहरों में, सिटी में जाते हैं, तो पूरा रास्ता पहला देख लेते हैं, आपके पास तो बुक्स होते हैं, नक्शे होते हैं, सब कुछ। फिर रास्ते में कहाँ क्या है, कौन से मोटेल है, कहाँ खाने का क्या इंतजाम है, कहाँ गैस मिलेगी, ये सब पहले ही जाने के पहले निश्चित करते हैं ना। तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है तो पूरा ही मोक्ष मार्ग कैसा है वो पहले निश्चित करना चाहिए। कब? मिथ्यात्व दशा में ही। वो निश्चित नहीं करेंगे तो सम्यक तो प्रकट ही नहीं होगा, हाँ ये कंडीशन है। तो पहले में पहले हम देखते हैं कि ये गुणस्थानों का स्वरूप भले बहुत डिटेल में न हो तो भी उसका सामान्य स्वरूप निश्चित होना ही चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये जो जीव समास आदि बातें बताई है, मार्गणा स्थान आदि, उसको भी हम देखने जा रहे हैं अभी, तो उनका स्वरूप क्यों जानना है? देखो ये जीव का सर्वांगीण स्वरूप है, संयोगों में क्या क्या बातें बनती है। जब हम कहेंगे एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, तो ये नक्की करना पड़ेगा इनमें से सम्यक दर्शन कौन से जीव को हो सकता है, हम कौन से जीव है, हमें कितनी इंद्रिया मन है, अन्य कौन कौन से गति में जीव है, या केवल हम मनुष्य ही होते हैं, अन्य कोई जीव होते हैं या नहीं होते। हमने तो मान लिया है यहाँ पृथ्वी पर ही मानव बस्ती है, अन्य कोई है ही नहीं है, तो इस त्रिलोक में क्या क्या बातें कहाँ कहाँ है, तो इसको अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारा ज्ञान यदि सत्य को नहीं जानता है और कुछ भ्रम से, अपनी कल्पना से कुछ भी मान लेता है, ऐसे भी कहते ना, इस स्वर्ग नरक भी कुछ नहीं होता। कोई तो हम साइंटिस्ट ऐसा भी कहते, डार्विन क्या कहना उसने, उत्क्रांति हुई, उनका कहने मानव वो ये मनुष्य गति नहीं थी पहले, बंदर में से आया, यानी तीरंज में मनुष्य हुआ, हाँ तो पहले तीर ही आयु थी इस विश्व में और अभी चौथी आयु हो गई, क्या है क्या कि तीन ही गतियां थी और अभी चौथी गति हुई, तो जब तीन गतियां था तो मोक्ष का दरवाजा बंद हुआ था, क्या हुआ क्या था, ख्याल है ना, हाँ। तो ये सब भ्रांति चलती है और ऐसी भ्रांति जब तक है, ये भ्रांति तो कायम रखे और हम समय दर्शन का प्रयत्न करें, क्या करें, नहीं उपयोग को खींचो और अंदर ले जाओ, किसमें अंदर, आत्मा, तो आप आत्मा के बाहर बैठे हो तो अंदर कहाँ जाना है, स्व कौन हो, आप ही स्व हो। हम क्या मानते हैं, मैं मनुष्य हूं, यह मैं हूं और मुझे अंदर जाना है, देन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अरे मैं ही आत्मा हूं, ये सबको जानने वाला ही मैं हूं। तो ये जो बाह्य बातें हैं ना, ये सब यहाँ जो अभी हम 20 प्ररूपणा देखने जा रहे हैं, प्रत्येक गुणस्थानों का स्वरूप, अभी वो विषय यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि वो बड़ा विषय है, उसको 10 दिन भी कम पड़ेंगे। तो गुणस्थानों का स्वरूप, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण आदि सब हम निश्चित करेंगे एक 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 विषय पर। ये जीव का जो बाह्य स्वरूप भी संयोगों के द्वारा भी उसका स्वरूप निश्चित करेंगे, तो ही हमें जो भगवान की वाणी है उसकी सत्यता का अभी हमें उसके जो अनुसार हमारा ज्ञान हो जाए तो ये हमारा ज्ञान सच्चा सही कहलाएगा। फिर वो सही ज्ञान के साथ फिर हम शुद्धात्मा की बात समझेंगे और उसमें एकाग्र होने पर समय दर्शन होगा, तब तक नहीं होगा। छह द्रव्य के बदले कोई दो ही द्रव्य मानेगा तो वो कहेगा इसमें क्या होता है, कोई तो ऐसा भी है ना, बस आत्मा ही बाकी सब मिथ्या है, तो उसके समय दर्शन होगा कि नहीं होगा? बहुत तप करने से कोई चांस नहीं है, इसलिए ये बातें जानने की भी आवश्यकता है। अब हम देखेंगे इसके, तो यहां कहते हैं तुम देखो ये नीचे से चौथा पैराग्राफ पत्र के अंत में, यदि जीव ने गुणस्थान मार्गणास्थान आदि जानकर, पहले कंडीशन क्या है इनको जानना, बाद में कंडीशन क्या है पश्चात उनका लक्ष्य छोड़कर स्वयं को जाना, स्वयं को यानी स्वयं मैं जो आत्मा हूं उसको जाना, तो ही उपरोक्त सभी बातें जानना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। उनको क्यों जान रहे हम, ये कर्मों की बातें क्यों जान रहे हैं? उनको जानने के लिए नहीं, आत्मा का स्वरूप निश्चित करने के लिए। तो जब आत्मा को उनका लक्ष्य छोड़कर आत्मा को जानते रहेंगे तो ही उनका जानना कार्यकारी होगा। बाकी चीजों को क्यों जान रहे, आत्मा को जानने के लिए। तो कहते हैं तुम पूछोगी इन सब का लक्ष्य छोड़ना ही था तो प्रथम इनका लक्ष्य करवाया ही क्यों, हम पहले से इन्हें जानना छोड़ देंगे क्योंकि यहां कहां वो हम इसकी क्या जरूरत है लगता है ना, इसको क्यों जानना, बाद में लक्ष्य तो आत्मा का ही करना है, तो आत्मा का ही लक्ष्य करना है तो पहले से करेंगे ना। परंतु पहले से करेंगे तो वहां बहुत सारी कल्पनाएं चल रही है अपनी, मति कल्पना, कल्पना से कुछ ना कुछ मान लेता है और फिर मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं करते बैठा है और उसको ऐसा लगता है कि मैं सत्य मार्ग पर हूं। जिनका व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान है ना ये संयोगों संबंधी ज्ञान, ये सब मार्गणास्थान गुणस्थान आदि जो है उसके संबंधी ज्ञान, उसको क्या कहा व्यवहार ज्ञान, आत्मा को जानेंगे स्वयं का ज्ञान और बाह्य चीजों को जो संयोगों को जानेंगे ये क्या है, ये सात तत्व संबंधी ज्ञान है, ये सब जो शास्त्र संबंधी आगम का ज्ञान उसको हम कहेंगे व्यवहार ज्ञान। कब कहेंगे व्यवहार नाम कब पाएगा, निश्चय हुआ तब, आत्मा का ज्ञान होने पर इस सब ज्ञान को हम व्यवहार ज्ञान कहेंगे। तो जिनका व्यवहार ज्ञान जिनमतानुसार यथार्थ नहीं है उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं, शक्यता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि वो तो पढ़ा था हमने दोपहर में, देखो हम देखते कि लोगों के अज्ञान का लाभ उठाकर समाज में अनेक प्रकार की भोंदूगिरी चलती है, इसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं तो कहां कहां कितनी भोंदूगिरी चलती वो मालूम है हमें। तो क्यों लोग अज्ञानी है समझते हैं कोई उनको हम मुक्ति देने वाले हैं बता देते हैं और लोगों को लगता चलो ये मुक्ति दिला देगा। देखो ऐसा भी बताते अरे ये तो तेरा कोई मर गया ना तो ये अमुक 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 इतना कर तो उस आत्मा को शांति मिलेगी। अभी हम कहीं गए थे वहां पूछा भी कि कोई जीव मर गया है तो हम अभी क्या क्रियाएं करेंगे तो उस आत्मा को शांति मिलेगी, बोलो बे आप तो जैनी हो ना, बोलो क्या करेंगे तो शांति मिलेगी, शांति पाठ तो करना चाहिए कि नहीं?
कुछ नहीं कर सकते हम,
कुछ नहीं कर सकते क्यों,
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य
क्यों नहीं कर सकते, परंतु हमें कुछ लॉजिक चाहिए ना, हमें जो कोई पुण्य पाप के फल मिलते हैं तो निमित्तों की भी भाषा में अगर हम कहेंगे, करता तो नहीं है कोई, निमित्त की भाषा में भी बोलना है तो निमित्त किसको ठहराएंगे, पुण्य पाप का हमने देखा था ना, पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति क्या है ये सब, कल हमने लिस्ट देखी थी यहाँ पर किसके नाम लिखे थे, हाँ बेन आप नहीं थे, हाँ
रात को थी,
हम कर्म प्रकृति कर्म का उदय हम कहलाते हैं। तो अभी वो जीव जो चला गया है उसके कर्म लेके गए कि यहाँ छोड़े छोड़े उसने बाकी सब छोड़ा इधर, जो कुछ कमाई की ना पाप से, कमाई छोड़ी और पाप ले गया है।
पुण्य में
अरे पाप पुण्य जो कुछ किया वो सब ले गया, सब कुछ ले गया है। तो ये ले गया, अभी वो जो जीव कहीं उत्पन्न हुआ है उसके कर्म उसके साथ है और उन कर्मों का फल मिलेगा उसको हर समय। हम यहाँ कुछ पूजा पाठ करेंगे तो उसको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको निश्चित करना है कि नहीं करना?
करेंगे तो हमें मिलेगा,
हमें मिलेगा वो तो
हमारी शांति के लिए हम करते हैं।
बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारा मन में शोक हुआ है, दुख हुआ है ना, तो हम भगवान का अरिहंत सिद्ध का नाम लेते हैं, उनकी गुणों की पूजा करते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो ये सर्वज्ञ भगवान ने तो ये सब जानी हुई बातें है ना, हमारा अस्थिर हुआ है मन तो हम अपनी शांति के लिए, क्योंकि वितरागता का स्मरण करने पर अपने भी राग भाव कषाय भाव मंद हो जाते हैं, इसलिए अपनी शांति के लिए हम करते हैं। हम कुछ करने से उनका कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, हम कर ही नहीं सकते किसी के। तो यहाँ कहते हैं ये जो भोंदूगिरी चलती है ना, हमने तो देखा अन्य मत में कितना है, वो जो वो इजिप्ट में है ना मम्मी सब पिरामिड्स वगैरह, तो क्या करते थे, वो राजा मर गया तो उसके साथ उसके नौकरों को भी दफना देते, उनकी सारी वस्तुएं जो है वो थालिया भोजन के जो कोई वस्तु होती होगी पैसा संपत्ति सब वहां रख देते थे, है ना, तो उनको मिलती होगी क्योंकि वो तो कहीं गए होंगे नरक में और वो न जाने वो जो नौकर है उनके अपने भावों के अनुसार कहीं अन्य गति में चले गए होंगे, हो सकता है ऐसा। तो ये तो भोंदूगिरी चलती है, हमें तो अन्य की भोंदूगिरी पर हंसी आती है, परंतु हम भी कभी कभी इसके वश होकर कुछ न कुछ गलत करते बैठते हैं। हमारे हिंदुस्तान में है ऐसे कोई, तो वो कहते मैं आपको सम्य दर्शन दिला दूंगा, तो उसके पीछे पागल की भांति लोग लगते हैं। तो ऐसे कोई किसी का देगा, दे सकता है? कुदेव तो नहीं सकता दे सकता, सच्चे देव तो देंगे कि नहीं बोलो, सच्चे देव आपको समय दर्शन दिला सकते कि नहीं?
अपने
हाँ वो तो रास्ता दिखाते, सबको दिखाते, और जो जी उसको सुनकर उस पर विश्वास करता है और अपने आत्मा की अनुभूति करता है उसको समय दर्शन होता है। ये तो उपदेश के द्वारा ये होता है, फिर हम कहेंगे आपके उपदेश के द्वारा हुआ तो हम आपके बहुत कृतज्ञ है, हम आभारी है, हम उनकी पूजा करेंगे, परंतु चलो आओ मेरे पास, ये तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, मैं तुम्हें समय दर्शन दिला दूंगा, ऐसी बात तीन काल में नहीं हो सकती। इसको कहते हैं वो भोंदूगिरी। हाँ, गुणस्थानों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग का स्वरूप, देव और गुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में आता है। देखो ये सभी बातें जो है ना, जितना आप अधिक विस्तार से पढ़ेंगे उतना ये पूरे विश्व का स्वरूप हमारे अच्छी तरह से ख्याल में आता है। ये तो विषय अपना हुआ था, अभी हम पत्रांक 14 से शुरू करने वाले हैं। ये सुबह इस पर बहुत चर्चा हुई थी अपनी सुबह दोपहर में, अभी पत्रांक 14 से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जीव समास। देखो यहाँ बोर्ड पर लिखा है उसको पहले पढ़ के फिर हम इसको शुरू करेंगे जीव समास को। अभी हमने देखा था ये जीवों की यानी संसारी जीवों की 20 अपेक्षाओं से उनका वर्णन करें।
116
उसको पढ़ने के पहले बोर्ड पर जो लिखा है ना यहाँ 20 प्ररूपना लिखा है वही पेज है ना, तो ये 20 प्ररूपना 20 अलग अलग व्याख्यान क्या है जीव के संबंध में, तो उसमें से एक तो है गुणस्थान। आपने नाम तो पढ़ा होगा ये गुणस्थान, 14 अलग अलग स्टेजेस के वर्णन आता है इसमें। और दूसरा ग्रुप है उसको कहेंगे मार्गणास्थान। अब ये मार्गणास्थान है ये तो ग्रुप का नाम है, उसमें क्या क्या होता है, तो एक गुणस्थान तो 19 सारे मार्गणास्थान में आएंगे, तो उन 19 में से 14 तो मार्गणाएं हैं और 5 अन्य प्ररूपणाएं हैं। तो ये अन्य प्ररूपणा में क्या क्या आता है, यहां लिखा है ना, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इनकी अपेक्षा से जीवों का वर्णन चलेगा। वो क्या है वो देखेंगे, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे लिए नए हैं। हम केवल अभी तो इसको पढ़ेंगे, फिर ये क्या है उसको देखेंगे। अभी 14 मार्गणाओं के नाम देखकर फिर हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, फिर हम जीव समास को देखेंगे, पहले वो मार्गणाओं के नाम देखेंगे। मार्गणा का अभ्यास तो हम बाद में करेंगे, पहले वो जीव समास आदि को देखने वाले हैं। तो पहले में पहले मार्गणा क्या होती है उसको देखेंगे। मार्गणा यानी जीवों की खोज, अन्वेषण। हमें संसारी जीवों को खोजना है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी कौन कौन सी अपेक्षा से क्या क्या उसमें ग्रुप्स हम बना सकते हैं, विभाजन, उसको कहेंगे मार्गणा। देखो हम पहले दृष्टांत के द्वारा समझेंगे। जैसे हम अभी जो कोई मानव जाति हमें मालूम है, उनको हमें विभाजित करना है, ग्रुप्स बनाना है। तो हमारा क्राइटेरिया होगा नेशन वाइज उनके ग्रुप्स करने हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये चाइनीज है, ये जापानीज है ना, अफ्रीकन है। हमने उनके देश के आधार से उनके ग्रुप्स बनाए। तो ये सभी जो है अभी हमें मालूम है जितने मनुष्य, वो इतने में डिवाइड हो गए, जितने देश है उसने अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया क्या हुआ, नेशन, ये हमारा क्राइटेरिया, नेशनैलिटी। बहुत अच्छा। अभी हम दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे, हम कहेंगे कि वो क्या बिजनेस करता है, उसका क्या काम है। तो कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई वकील है, अब कोई बिजनेसमैन है, कोई तो कुछ वर्क भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी है ना, कोई कारागिर है भी, उसमें जितने आप भेद पाएंगे। तो अभी हमारा क्राइटेरिया हुआ बिजनेस। तो अभी वो अमेरिकन डॉक्टर हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, सभी डॉक्टर्स एक ग्रुप में आएंगे। अपना क्राइटेरिया बदलेगा तो वे ही सब जीव, सब मनुष्य दूसरे दूसरे ग्रुप में चले गए। ख्याल में आता है, जो पहले केवल अमेरिकन अमेरिकन अलग किए थे, जब हम कहेंगे डॉक्टर, सभी डॉक्टर एक ग्रुप में आएंगे, तो जो अमेरिकन हो, इंडियन हो, अभी उसको भूल जाओ, अभी सभी डॉक्टर एक ग्रुप में आ जाएंगे, सभी इंजीनियर्स एक ग्रुप में आ जाएंगे। इसको कहेंगे क्राइटेरिया बदल गया, तो उसके ग्रुप बदल गए। अभी हम कहेंगे कि हम तीन ग्रुप करेंगे, पुरुष, स्त्री और बच्चे। तो अभी जितने कुछ डॉक्टर्स हो या कुछ हो, अभी हमारा क्राइटेरिया बदल गया, तो हमारे ग्रुप्स बदल गए। उसमें ऐसे हम अलग अलग अनेक क्राइटेरिया लगा सकते हैं। मार्गणाओं में ऐसा ही है, जीवों का वर्गीकरण, कौन से संसारी जीवों का। अभी हम सिद्धों को अलग रखेंगे और जितने संसारी जीव है उनका क्लासिफिकेशन करेंगे और उसमें अलग अलग अपेक्षाएं लगाएंगे। अभी हम शॉर्ट में देखेंगे, फिर इसमें विस्तार में जब जाएंगे बाद में, जब अपना मार्गणाओं का विषय चलेगा। यहाँ पहला नाम क्या लिखा है बहन, गति मार्गणा। अभी नाम लिखने की जगह नहीं थी, फिर इसको कहना गति मार्गणा। तो गति मार्गणा, अभी हमें सभी संसारी जीवों को गतियों की अपेक्षा डिवाइड करना है। तो कितनी गतियां हैं,
चार।
हम क्या कहेंगे, ये मनुष्य गति वाले जीव है। हाँ, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, ये चार ग्रुप्स हुए। अभी हम अपना क्राइटेरिया बदलेंगे, दूसरे नंबर पर क्या है, इंद्रिय। इंद्रिय जब कहेंगे तो कितने इंद्रिय वाला जीव है, नहीं ऐसे हम उसके ग्रुप करेंगे। हमें ग्रुप्स करने हैं, हमारी इंद्रिया कितनी नहीं बताने। अभी हमारा क्राइटेरिया बदल गया है, पहले हमने चार गतियों में विभाजित किया था, अभी अपना क्राइटेरिया क्या है, कितने इंद्रिय वाला जीव है। कोई एक इंद्रिय वाले हैं, कोई दो इंद्रिय वाले हैं, कोई तीन इंद्रिय वाले हैं, कोई चतुरिंद्रिय है, कोई असंगी पंचेंद्रिय है, या हम दोनों को मिलकर पंचेंद्रिय कहेंगे। अब कितने में डिवाइड होगा, पांच में। अब मुझे कहो, पहले जो चार गतियां थी वो किसमें किसमें आ गई, आप बताएंगे भाई।
मनुष्य
किसमें आ गए, पंचेंद्रिय में आए। हाँ, और देव आपको मालूम नहीं, और नारकी नहीं, सुनो, जिसको मालूम है उसको अभी नहीं बोलना है, जिसको नहीं मालूम उनको सोचना है। तो मनुष्यों को तो हमने पंचेंद्रियों में इंक्लूड कर दिया, बहुत अच्छा। देवों को कहाँ डालेंगे आप?
पंचेंद्रिय।
हाँ, वो भी पंचेंद्रिय। और नारकी?
पंचेंद्रिय।
हाँ हाँ, नारकी कौन है?
एक इंद्रिय
जीव। देखिए देखिए, भूल होती है किसकी तो बोलने से निकल जाएगी। क्यों? हमें भी जब तक ज्ञान नहीं था हम भी भूल करते हैं ना, तो हम बोल देते हैं तो अपनी भूल तो सुधर जाती है, उसमें तो उनका ही फायदा है। मन में रखेंगे तो फिर इतना याद नहीं रखेगा। तो मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है, देव पंचेंद्रिय जीव है, और नारकी वो भी पंचेंद्रिय जीव। अब तीर्यंच इसमें से कहाँ आएंगे? किसको पूछूं मैं? हाँ आप पीछे, हाँ आप बताना, इसमें ये एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्द्रिय पंचेंद्रिय में तीर्यंच को कहाँ रखना?
एकेंद्रिय
में। अब कुत्ते बिल्ली को भी एकेंद्रिय में रखना क्या? तो चार इंद्रिय। कुत्ता बिल्ली चार इंद्रिय, कुत्ता बिल्ली चार इंद्रिय, अरे संगी पंचेंद्रिय है,
संगी पंचेंद्रिय।
हम ये पेट एनिमल से ट्रेन कर सकते हैं, नाम बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, आते हैं, वो संगी पंचेंद्रिय जीव है। ये पशु पक्षी जो हम दिखाई देते हैं हमारे आसपास, वो तो मेजोरिटी तो संगी पंचेंद्रिय है। आपको तो ये फिश को भी ट्रेनिंग करते हैं, डॉल्फिन के आप शोज देखते हैं और सील के देखते हैं, ये सारे संगी पंचेंद्रिय जीव है। संगी यानी मन वाले, जितना हम आप जानते हैं ना मन से, उनमें भी समय दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है और प्राप्त करते भी है। तो तीर्यंचों को कहाँ रखना है? सभी में रखना। ये पृथ्वी का एक जीव कौन से गति के जीव है? कौन सी गति पूछा? नरक गति। और ये जल का एक? आप तो एक बाजू से तो सही उत्तर दे रहे हैं और दूसरे बाजू से पूछेंगे तो गलत हो रहा है। नहीं, अभी मैंने पूछा एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय पंच इंद्रिय तीर्यंच है। जब मैं पूछती हूँ पृथ्वी का एक कौन से जीव है, तो आप कहते हैं नारकी है, नरक गति के जीव। क्या सही है?
निगोद का जीव।
निगोद का जीव क्या है?
पृथ्वी का।
नहीं, ठहरो ठहरो, निगोद का जीव क्या है? अरे ठहरो ठहरो, उनको बोलने दो।
पृथ्वी का जीव सब निगोद के नहीं जाना, पृथ्वी का आपका एक जीव।
नहीं नहीं नहीं,
कोई बात,
हम देखेंगे। ये निगोद के बारे में बहुत भ्रमण है। अभी देखो भाई, वॉशिंगटन में दो घंटे में निगोद पर बोल जाते हैं, निगोद पर दो घंटे, क्योंकि निगोद के बारे में इतनी भ्रमणा है। और कहीं बाहर से प्रश्न आया था उनको ईमेल से,
यहाँ तीन घंटा बोलना पड़ेगा।
सुनना पड़ेगा दिन में तीनों टाइम। देखिए, एकेंद्रीय जीव कौन कौन से है? अभी मैं बोलू ना तो आप पटपट बोलेंगे। पांच स्थावर कौन कौन से है?
पृथ्वी का है, अब का है, तेल का है।
देखो 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 कैसे पहला नंबर है उनका, बहुत अच्छा। ये कौन है सब? एकेंद्रिय। एकेंद्रिय जीव कौन से गति के जीव है? आपने तो अभी फटाफट बोल दिया। हाँ, तो पृथ्वी का एक जीव कौन से गति के है? देखो, हमने देव पंचेंद्रिय कहा, नारकी पंचेंद्रिय कहा, मनुष्य पंचेंद्रिय कहा, अब बचे कौन? तीर्यंच। ये सारे तीर्यंच है, हमें तीर्यंच है, वो चलने वाले पशु पक्षी, इतना ही तीर्यंच को समझा है। परंतु ये सारे वायु का एक भी तीर्यंच, ये तीर्यंच गति है। जल कायकों की तीर्यंच गति है, पृथ्वी कायक की तीर्यंच गति है, वनस्पति कायक की तीर्यंच गति है। आप जो निगोद कहते हैं ना, निगोद कौन से कायिक वाला जीव है? वनस्पति कायिक है। वनस्पति कायिक में कोई प्रत्येक शरीर वाले, एक शरीर एक जीव होता है, और निगोद एक शरीर और अनंत जीव। हाँ, जिसको साधारण वनस्पति कायिक कहते हैं, वो काय मार्गणा में आएगी बात, फिर हम यहाँ भी देखेंगे उसको। हाँ बोलो, आपका क्या प्रश्न है? बिल्कुल प्रश्न पूछना, कोई मन में संदेह मत रखना इसके बारे में, क्योंकि हमें तो मालूम है ये सब, तो हम ऐसा उल्टा करके प्रश्न पूछेंगे तो गड़बड़ी हो रही है ना। हमें पक्का करना है और कुछ नहीं है।
ये सब तेरी अंचल का
हाँ, जो है हमने पांच स्थावर काय देखे ना, वो किस में आते हैं? एकेंद्रिय में आते हैं।
एकेंद्रिय,
द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे ही तिर्यंच गति के जीव है। मनुष्य सभी पंचेंद्रिय ही होते हैं, संगी पंचेंद्रिय मन वाले। देव सभी संगी पंचेंद्रिय है और नारकी भी सभी संगी पंचेंद्रिय जीव है। तिर्यंचों में भी संगी पंचेंद्रिय है और इन एडिशन संगी पंचेंद्रिय तो है ही है, असंगी पंचेंद्रिय भी होते उनमें, बिना मन वाले पंचेंद्रिय जीव। और फिर बाकी हमने जो देखे थे एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, वे भी सभी क्या कहलाते हैं? तिर्यंच गति। तो जब गति की अपेक्षा लगी, क्राइटेरिया, गति के क्राइटेरिया लगे तो हमने चार भेद किए, बराबर है ना। जब इंद्रियों की अपेक्षा लगी, क्राइटेरिया अपना बदल गया, तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी तिर्यंच में आ गए। यानी तिर्यंच गति वाले जो जीव है वो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय में डिवाइड हुए और सभी देव गति, नरक गति, मनुष्य गति की भी पंचेंद्रिय में आ गए। तो अभी डिवीजन बदल गई कि नहीं, क्राइटेरिया बदल गया। इसकी बात तो हम विस्तार से करने ही वाले, पहले पहले थोड़े उसके हम झलक देख रहे थे। तीसरी मार्गणा कौन सी लिखी है? हाँ भाई, वहां क्या लिखा है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। काय मार्गणा है ना, काय का अर्थ होता है शरीर। तो कितने अलग अलग काय वाले जीव होते हैं। अभी संसारी जीवों को हमें डिवाइड करना है। अपना क्राइटेरिया, अपनी अभी अपेक्षा कौन सी है? काय यानी शरीर। तो हमने तो सुना है शास्त्र में षटकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये षटकाय कौन कौन से होते हैं?
पृथ्वी काय।
हाँ, अभी आपने बताया ना। हाँ बोलो बोलो।
पृथ्वी काय, अपकाय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय।
और कौन सा काय? त्रस काय। बहुत अच्छा, जो अभी हमने देखा, जिसको मालूम नहीं मैं स्लोली रिपीट करूंगी। पृथ्वी कायिक जीव, पृथ्वी ही जिनकी काया है, शरीर है, उनको कहेंगे पृथ्वी कायिक जीव। जल कायिक जीव, जल ही जिनकी काया है। देखो, जल में रहने वाले जीव अलग, हम पानी छान कर पीते हैं तो उसमें से तो वो जल कायिक जीव, तो क्या जल तो नीचे आता है, परंतु तो उसमें जो त्रस जीव रहते हैं तो उनको बचाने के लिए हम उसको छान कर पीते हैं। ये जल कायिक जीव है। फिर अग्नि कायिक जीव, अग्नि ही जिनकी काया है, वो है अग्नि कायिक जीव। हमें जो दिखाई देता है वो शरीर है अग्नि कायिक जीवों का। फिर कौन से रह गए भी? वायु कायिक जीव और वनस्पति कायिक जीव। ये तो सारे ही एकेंद्रिय जीव है, जिसको स्थावर काय भी कहते हैं। और अन्य कौन सा रह गया अभी? त्रस कायिक जीव। अब मेरा प्रश्न है, जो जीवों को हमने पहले पांच में डिवाइड किया था, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, अभी ये जादू चलेगी यहाँ पर। अभी हमने काया की अपेक्षा इनको डिवाइड किया तो इस एक में से पांच हो गए और ये चार इकट्ठे हो गए। एकेंद्रिय में से पांच स्थावर काय हो गए, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, वनस्पति। और जो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, इस सबको मिलकर क्या कहा? त्रस काय। इनको त्रस काय होती है। इसमें सभी आए, त्रस काय में कौन कौन से गति वाले आएंगे? द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तिर्यंच आएंगे। मनुष्य किसमें लेना? अभी हम काया की अपेक्षा बात कर रहे हैं, अभी पंचेंद्रिय की बात यहाँ। त्रस काय, देव, त्रस किसको कहना? जो मूविंग होता है। हमें ऐसे कोई चाहिए बताने वाले। तो जल मूविंग होता है कि नहीं?
जल होता है।
हाँ, वायु मूविंग होता है कि नहीं? या वो कैटरीना और रीटा आई थी ना, हाँ, तो वो मूविंग है ना। और अग्नि भी मूविंग होता है, तो उसको त्रस कहेंगे कि स्थावर कहेंगे? तो ये जो हम परिभाषा बनाते हैं ना, आज दोपहर को बात आई थी ना, लक्षण ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो त्रस किसे कहना? तो जिसको त्रस नाम कर्म का उदय है उन जीवों को त्रस कहते हैं। जो हले चले नहीं एक जगह बैठे वो स्थावर ऐसा कहेंगे, तो जो इंडे में जो है पक्षी का इंडा उसको कौन सा जीव कहेंगे? स्थावर के त्रस
के।
और जो कोमा में है मनुष्य उसको क्या कहेंगे?
सोया हुआ।
कोमा में गया है,
सोया हुआ,
सोया हुआ है, हिल नहीं रहा, उसको क्या कहेंगे? तो ये हमारी जो परिभाषा है, जो हिलता डुलता नहीं है वो स्थावर, और जो हिले डुले चले वो त्रस, ये परिभाषा गलत है। तो कैसी सही है? जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर जीव है, और जिनको त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस जीव है। अब एक आसान प्रश्न है, हम सबसे पहले नमो अरिहंतानम कहते हैं तो अरिहंत भगवान त्रस है क्या नहीं, के स्थावर है क्या, दोनों ही नहीं है क्या, है क्या? हाँ बोलो भाई बोलो, अरिहंत भगवान क्या है, कौन से कैटेगरी में डालेंगे? हाँ त्रस। हाँ आप क्या कहते बहन? बहुत बहुत हल्का आवाज आता है, क्योंकि अरिहंत भगवान को त्रस कहना कैसा कैसा लगता है ना आपने।
केवल ही है ना वो, तो
वो त्रस नहीं है,
उसको तो
सब माफ है, कुछ नहीं उसमें। तो अरिहंत भगवान किस में डालेंगे? संगी पंचेंद्रिय डालेंगे कि क्या क्या कहेंगे उनको? हमें तो उनके नक्की करना है ना, ये कौन सा जीव है, कौन से गति का जीव है अरिहंत भगवान?
मनुष्य गति का
है ना, नक्की का नहीं? हाँ है मनुष्य गति का, क्योंकि मुनि है, मुनि ही केवल ज्ञान होते हैं, उनको अरिहंत कहेंगे हम। हाँ कितने इंद्रिय वाला है? संगी पंचेंद्रिय। अभी इंद्रियों से जानता नहीं वो बात अलग है, अभी केवल ज्ञान से जानते हैं, उन तो है संगी पंचेंद्रिय। अब हमको काय मार्गणा में उनको रखना है, कहाँ रखेंगे? त्रस में रखेंगे कि स्थावर में रखेंगे? त्रस में रखेंगे। बोलो ना, वो अरिहंत भगवान को कोई गुस्सा आता ही नहीं है। हाँ अरे वो तो वितराग है, और वो तो कहेंगे मैंने बताई हुई सच बात ये जानते तो कितना अच्छा है ना। देखो हम आगम के द्वारा जान रहे, तो हमारा ज्ञान जानना कितना है? केवल ज्ञान जितना है। केवल ज्ञानी ने कितने द्रव्य जाने इस विश्व में? बोलो, छह द्रव्य। और हम आप कितने जान रहे हैं? छह। भगवान ने पांच स्थावर काय जाने, हमने कितने जाने? तो हमारा ज्ञान कितना है? केवल ज्ञानी जितना है, जितना नहीं जैसा। क्यों? केवल ज्ञानी ने प्रत्यक्ष जानकर बताया, बताई हुई बात आगम में है, और जो आगम में है वो हमने जानी, तो हमने जो जाना वो 100% सत्य है। इसको परोक्ष कहते हैं और उनको प्रत्यक्ष कहते हैं। वो प्रत्यक्ष जानकर बताते हैं, और उन्होंने वो जो बताया वो सुनकर या पढ़कर हम जानते हैं। तो ऐसा गोमरसार में लिखा है, जो केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी में अंतर मानता है ना, वो मिथ्या दृष्टि है। अंतर क्या है? वो प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते, इतना मात्र अंतर है। देखो ये हमारा ज्ञान यदि आगम के अनुसार होगा तो ये सच्चा ज्ञान है। हम पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आप यहाँ तो सब चेकिंग करते हैं ना, यहाँ तो बहुत रेगुलर चेकिंग चलती है कि नहीं चलती? तो रिपोर्ट आता है, हम आपसे पूछेंगे आपकी ब्लड शुगर कितनी है, तो आप झट से बता देंगे इतनी है। क्यों मालूम है ना, हर एक को अपने अपने। कितना परसेंट विश्वास है उस पर? कहां से जाना? रिपोर्ट से जाना। उन्होंने लिख दिया और आपने जान लिया, कितना परसेंट? 100%। और भगवान के आगम से जाना कितने परसेंट विश्वास है?
जाना तो 100% ही रखना चाहिए,
चाहिए। परंतु हम क्या, नहीं नहीं नहीं, इसको साइंटिस्ट प्रूव करेंगे तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्यों बेन, कहते कि नहीं कहते? और वहां आप पैथोलॉजिस्ट के ऊपर ऐसा अविश्वास दिखाओ कि दिखाओ मुझे आपका सर कैसे चेक किया, आपने जो कोई माइक्रोस्कोप में देखा होगा मुझे बताओ, तब मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा।
वो भी कहां देखते
हैं? और वो भी बाय चांस, गलती से कोई अन्य नाम का आपके दूसरे पेशेंट का आपके नाम पर होता है कि नहीं होता? फिर भी सभी पूरी ट्रीटमेंट करेंगे वैसे, और डॉक्टर ने बताया है कैंसर हो गया है, तो कितने साल बाद उसका इलाज करेंगे?
तुरंत
तुरंत। अच्छा क्यों?
डॉक्टर ने कहा है।
डॉक्टर ने, क्यों वो भगवान है?
वो भगवान नहीं है, फिर भी इतनी श्रद्धा
क्या होता है
डॉक्टर में?
क्यों है
उसमें श्रद्धा है बताए ना?
श्रद्धा है, क्यों है श्रद्धा, वही तो मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, शरीर मैं हूँ और मैं नहीं मानूंगा तो इसका कुछ होगा, तो ख्याल है ना, ये डर है, इसलिए वो उठ बोलता तो उठेंगे, बैठ बोलता है जीभ बाहर निकालो निकालो, मुझे पता है ना, अरे मैंने 30 साल प्रैक्टिस की है। लेट जाओ लेटेंगे, जो कहेगा वैसे, आज को आपसे ये आपका डाइट है, ये नहीं खाने जाए बिल्कुल, वो फिर टेबल पर सब वैसी चीजें होगी। और भगवान ने बताया है, अरे जहाँ अनंत जीव रहते हैं ऐसी चीजें मत खाओ। कौन सी अनंत जीव रहते जहाँ पर?
कंदमूल।
हाँ, कंदमूल ही नहीं, बहुत लिस्ट बड़ी है, परंतु वो अनंत जीवों का रहने, वो कौन सी, वो देखेंगे हम जीव समास में सब देखने वाले। तो अनंत जीव जहाँ रहते हैं ऐसी बातें भगवान ने बता दी हमें कि हम उनकी हिंसा से बच सके। जहाँ अनंत जीव एक साथ रहते हैं, एक एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, तो हम क्या कहते, किसने देखा? पैथोलॉजिस्ट को नहीं पूछते कि किसने देखा, और भगवान की बातों को पूछते हैं, हाँ बताते हैं किसने देखा। वही हुआ ना, रोज सुबह नमो अरिहंतानम, बहुत श्रद्धा विनय से हम पगे लागे छे, है ना, और दिन में कितना मानते भगवान की बातें, हम अपने से पूछना, दूसरे को नहीं बताना। तो ये जो हम कौन सी बातें देखी थी, काय मार्ग, अभी सब देख ले, देख लेते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाद में तो विस्तार में जाना ही हमने को। ये काय की अपेक्षा हमने अलग अलग ग्रुप्स किए, 6 ग्रुप्स किए। अब उसके आगे का नाम क्या है बेन?
योग।
अब योग में तो अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि योग में भी मनोयोग है,
वचन
योग है,
काय
योग है। अभी हमने तो स्थावर काय लिए थे और यहाँ त्रस्काय लिए थे। तो स्थावर कायों में कौन सा योग होता है? मन और वचन होते हैं कि नहीं उनके?
नहीं
होते, तो उनके योग वो नहीं होते, मनोयोग वचन योग। अब कायोग में कौन से हो गए, उस हम बातें जब करेंगे, योग की बात आएगी तब, क्योंकि ये हमारा अभी का विषय नहीं, हमें तो थोड़ा उसका अंदाजा लेना है। पहले क्या, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय। वेद की अपेक्षा से भी वो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उसमें भी डिविजन हो गए, प्रत्येक गति में कौन कौन से हो गए, कहाँ कौन से होते हैं, एक इंद्रियों में कौन से, वो सब उसमें वर्णन आएगा। योग वेद कषाय है ना, बाद में तो कषाय में फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे डिविजन्स होगे, फिर उसमें अकषाय भी जीव होगे, नहीं समझे? जब कषाय का क्राइटेरिया लगाएंगे तो ऐसे कोई जीव है कि जिनमें कषाय ही नहीं है? हाँ, गुणस्थानों में बताना है। हाँ बोलो भाई, कोई जीव ही उसमें कोई कषाय ही नहीं, ऐसे कोई जीव है कि नहीं है, आप बोलेंगे?
तीर्थंकर।
हाँ, तीर्थंकर। क्या अकेले तीर्थंकर है कि और भी कोई है? अच्छा, 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं है। हाँ, हमारी ज्योतिबेन बताने वाली है बाद में कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, बाकी आप ट्राई करना, तब तक अकेले 13वें वाले कोई कषाय नहीं है, बाकी सबको है।
11 के बाद में सर।
हाँ, 11, 12, 13, 14 हमने देखे थे ना, 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ होता है। तो हम पहले कषाय मार्गणा में 2 डिवीजन करेंगे, कषाय वाले और बिना कषाय वाले, और फिर उसमें हम कहेंगे वो क्रोध वाले, मान वाले, माया वाले, लोभ वाले, उसकी बात हम बाद में। फिर कौन सा है, ज्ञान है ना, जैसे हमने कषाय में देखा ना, कषाय वाले और बिना कषाय वाले। अभी मुझे बताना, पुरुषों से बात प्रश्न पूछूंगी पहले, नॉट लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। तो ज्ञान वाले और बिना ज्ञान वाले, ऐसे दो हमको डिवीजन करने हैं, तो उस किसको ज्ञान वालों में डालेंगे, किसको बिना ज्ञान वाले में? आप कह सकेंगे भाई? नहीं, कोई भी कहे।
हाँ।
अरे आप यहाँ बैठे हो, अच्छा चलो चलो, पुरुषों में से किसी ने तो उत्तर दिया है। क्या कहते हैं, ज्ञान जीव का लक्षण है, ज्ञान रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता।
भले वो निगोद का जीव है, एकेंद्रीय का जीव है, कोई भी हो, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, कोई भी, या सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो, सभी जीवों का लक्षण क्या है? ज्ञान। तो बिना ज्ञान का कोई जीव नहीं होगा, ये मैंने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। हमको विचार करना है ना, क्योंकि हम तो ऐसा तो रट लेते हैं, उल्टा सुल्टा कुछ पूछे तो गड़बड़ होती है ना। तो बिना ज्ञान का कोई जीव नहीं है, तो फिर हम उसमें कहेंगे मति ज्ञान वाले कौन है, शुद्ध ज्ञान वाले, अवधि ज्ञान वाले, मनपरे ज्ञान वाले, केवल ज्ञान वाले। अब उसमें हम डिवाइड करेंगे। आगे की मार्गणा कौन सी है?
संयम।
अब संयम की तो जब विस्तार से कहेंगे तब उसमें भी कोई असंयम ही है, संयम की अपेक्षा से भेद करने हैं। तो कोई असंयमी है, कोई संयमी है, और कोई संयमासंयमी है, पांचों गुणस्थान में। फिर संयम में भी वो जो भेद करने हैं, सामायिक, चतुपस्था, परिहार, विशुद्धि वगैरह वगैरह, वो उसमें भेद करेंगे। उसके बाद दर्शन मार्गणा में भी, जैसे ज्ञान सब जीवों का लक्षण है, वैसे दर्शन भी सबका लक्षण है। तो उसमें भी चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन के भेद करेंगे। सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों के भेद करना है। क्या करना है? सम्यक्त्व की अपेक्षा जीवों के भेद कौन करना चाहेगा? तो ऐसा करेंगे, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है ऐसे जीव, और जिनको सम्यक दर्शन है ऐसे जीव। तो जिनको सम्यक दर्शन नहीं है ऐसे पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, और जिनको सम्यक दर्शन है उनमें फिर हम कहेंगे वो औपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्षौपशम वाले है, क्षायिक वाले। इस तरह से प्रत्येक मार्गणा में हम जीवों का विभाजन, डिवीजन देखेंगे। आगे भी जो लेशा है, छह लेशाओं की अपेक्षा वर्णन करेंगे, कौन सी गति में कौन सी लेशा होती है, एकेंद्रियों में कौन सी होती है, देवों में कौन सी होती है, नरकों में कौन सी होती है, ये पूरा विस्तार यहाँ आता है। तो हमें उस संबंधी सही ज्ञान हो जाता है। हमारी जो कोई गलत मान्यता चलती है ना, तो सही ज्ञान होने से वो गलत मान्यता दूर हो जाती है। उसमें और भी है ना, आहार भव्य भी है और संज्ञा संगी भी है, संगी असंगी, जो संगी पंजे समय तो हो गया, संगी और आहार। आहार मार्गणा में भी जो आहार, अभी आहार किसको कहना, कल परसों बात आई थी ना, नोकर मैंने शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करना। जीव कहीं मरकर दूसरे भव में जाता है, वहां के परमाणुओं को ग्रहण करता है, वहां शरीर रूप रचना होती है। वहां कोई रेडीमेड शरीर नहीं होता जिसमें अंदर जाके जीव घुस जाता है। यह सब रेडीमेड मिलता है ना, कपड़े रेडीमेड पहनते हैं, ऐसा कोई रेडीमेड शरीर होगा और उसके अंदर जीव जाके घुस जाता हो, ऐसा नहीं है। जीव अपने योग के कारण कर्म को जैसे ग्रहण करता है, वैसे ये नौ कर्म के परमाणुओं को भी शरीर रूप से परिणमाता है और वहां वो शरीर की रचना हो जाती है। तो ये सारी बातें जो है, जीवों का जो क्लासिफिकेशन है, इसको मार्गणा कहेंगे। ये 14 नाम है उसके, और अन्य जो 5 प्ररूपणा हमने देखी ना, जीव समास वगैरह, उन जीव समासों की अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ जीव समास नाम का जो प्रकरण है 14वें नंबर का, पृष्ठ 116 गुजराती में और हिंदी में 118। देखो ये हमने जो मेन डिवीजन किए थे गुणस्थान, और दूसरी मेन डिवीजन मार्गणास्थान। अभी ये गुणस्थानों का एक नाम है संक्षेप और ओम, सुनना या बाजू वाले के पुस्तक में देखना। हाँ, हमने 2 मेन डिवीजन किए थे, कौन कौन सी, गुणस्थान और मार्गणास्थान। जब हम कहेंगे गुणस्थानों का, गुणस्थान की अपेक्षा, तो उसके लिए ऐसा भी कहते हैं संक्षेप में, गुणस्थानों को ही संक्षेप कहेंगे, तो मार्गणास्थानों को विस्तार कहेंगे। गुणस्थानों का एक नाम है ओघ, ओघ से ऐसा कहेंगे तो गुणस्थान की अपेक्षा बताएंगे, और वहां आदेश यानी मार्गणास्थान, ऐसे उसके अन्य अन्य 2 नाम है, इतनी बात उसमें देखनी है। उसको विशेष भी कहते हैं और गुणस्थान को सामान्य भी कहते हैं। तो हमने गुणस्थानों के तीन नाम देखे, एक गुणस्थान, एक ओघ, एक संक्षेप और एक सामान्य। और मार्गणास्थान के लिए क्या क्या देखा?
विस्तार,
आदेश, विशेष
और मार्गणा।
और विस्तार तो देखा हमने, मार्गणा तो कहते ही है। अब ये दूसरा पैराग्राफ देखेंगे हम, वो तो गुणस्थान मार्गणास्थान। हाँ देखिए तीसरा पैराग्राफ, वास्तविक देखा जाए तो मार्गणा 14 है, परंतु उनमें जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 5 प्ररूपणा, प्ररूपणा यानी जीवों का व्याख्यान, उसका कथन, ये मिलाकर इन सबको मार्गणास्थान कहने की पद्धति है। अब हम आगे थोड़े बढ़ेंगे आगे के पृष्ठ पर, ये 2-4 छोटे पैराग्राफ छोड़कर आगे। हमारा हरेक का आज अस्तित्व है, इसके बारे में किसी को शंका है? हरेक का अपना अस्तित्व है, इसकी गारंटी है ना बेन? आप हो कि नहीं हो? बिल्कुल हो, है ना? क्योंकि स्कूल में हम उपस्थिति लेते थे ना, तो यस सर यस मैडम कुछ कहते कि नहीं, तो हम है इसको, तो हमें बाजू वाले को पूछना नहीं पड़ता, अरे मैं हूं कि नहीं जरा बता दो। हर एक जीव को अपने अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, तो हमारा हर एक का आज अस्तित्व है। प्रत्येक जीव को मैं हूं इस तरह अपने अस्तित्व का ज्ञान एवं विश्वास होता है, यह बात उसे सिखाने नहीं पड़ती। आप कहेंगे नहीं सिखाते, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो कहे मैं कौन हूं ये सीखने के लिए। मैं हूं ये तो गारंटी के साथ सबको मालूम है, परंतु मैं हूं ये बात तो ख्याल में आती है, परंतु दिखाई देता है शरीर, तो यही मैं हूं मान लिया, ये उसकी मिस्टेक हो गई। तो जिसका अस्तित्व है ऐसा पदार्थ, तो मेरा प्रश्न है जिसका अस्तित्व है यानी हमेशा ही है, ऐसा कौन सा पदार्थ इस विश्व में है? बोलो बेन। आत्मा, आत्मा का ही अस्तित्व है ना इस विश्व में, और किसी का अस्तित्व है भाई इस विश्व में? और किसी पदार्थ का अस्तित्व है कि नहीं है? बहुत अच्छा, 6 द्रव्यों का। और कितने हैं? तो जीव अनंत, पुद्गल अनंत, अनंत, धर्म अधर्म कितने हैं? एक एक। आकाश भी एक है और काल, लोक, प्रमाण, इतने सभी द्रव्यों का अस्तित्व है। तो कहते जिसका अस्तित्व है ऐसा द्रव्य त्रिकाल अस्तित्ववान होता है। जिसका आज अस्तित्व है उसका अनादि से अस्तित्व है, और वो उसका अनंत काल तक अस्तित्व रहने वाला है, उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा वो बात आएगी सिद्धांत प्रवेशिका में। उसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, अस्तित्व गुण की चर्चा में हमने इसे विस्तार के साथ समझा ही था। मैं आज हूं, कल भी थी, वर्तमान में मैं मनुष्य पर्याय में हूं, उसके पूर्व अन्य पर्याय में थी। पर्याय ने अन्य कोई, अभी हमने 4 गति देखी ना, किसी न किसी गति में, किसी न किसी इंद्रिय में हम घूम रहे थे, जन्म मरण करके आज यहाँ आए हैं। इस तरह अनादि काल से हमारे प्रत्येक का अस्तित्व कायम है। अस्तित्व कब मिटेगा? हाँ बेन, मरण होने पर मिटेगा कि नहीं? मोक्ष होने पर मिटेगा ना? आप क्या कहते हैं? अस्तित्व मिट जाएगा, तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ हम क्यों करें? हमारा अस्तित्व ही नाश हो जाएगा, तो आप क्या कहते बेन?
जन्म मरण का चक्र
जो मिटेगा, हम अस्तित्व की बात करें, अस्तित्व हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा कि मिट जाएगा?
रहेगा।
नहीं नहीं, पक्का निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष का उपाय करने आए हो तो आपका अस्तित्व मिटाने के लिए आए हो कि जो अभी अस्तित्व है, अभी इस अस्तित्व है हमारा, फिर भी हम दुखी है, और हमें ऐसा अस्तित्व रहते हुए भी हमें अनंत सुख चाहिए, तो अनंत सुख चाहिए तो उसको भोगने वाला वहां रहेगा कि मिट जाएगा? यानी मोक्ष प्राप्त हुआ, अत्यंत वहां अतीन्द्रिय अनंत आनंद आ गया और हम मिट गए, तो उसको भोगेगा कौन?
आत्मा।
अरे पण आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है कहते ना?
नहीं
मिटेगा। अरे ठोक नहीं तो फिर मोक्ष में कौन जाएगा? हमने तो सुना वहां बहुत सुख है, परंतु वहां ढोकला मिलता है कि तो कहते जो कुछ खाना पीना है ना यही खा लो, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ तो हम खाने से सुख मान रहे हैं, ये हमारी भ्रांति। देखो इसकी बात करेंगे, एक पैराग्राफ पढ़कर अपना समय होने को आया है। देखो इस तरह अनादिकाल से हमारे प्रत्येक का अस्तित्व कायम है, अनंतानंत भवों में घूमते घूमते आज हम यहाँ आए हैं। ये अनंतानंत भव कितने हैं? ये पांच परावर्तन सुने के बिना आपने कभी सुने? अभी अभी वॉशिंगटन में हुए हमारे पांच परावर्तन
किया था
ना। हाँ हे जीव, क्या इस भवभव में भटकने से, इस भ्रमण से तू अभी तक व्यथित नहीं हुआ? अनादिकाल से मोह निद्रा में तू निद्रिस्त है, सोया हुआ है। जाग भैया जाग, अब तो तेरे जागने का समय आया है। आज तक तू कहां कहां जन्म मरण करते आया है सुन तो सही, कहां कहां जन्म करते आया है वो हम अब कल सुनेंगे। क्योंकि अभी हमारा समय यही समाप्त होता है। बोलो 2400 भगवान की जय।